5 अप्रैल दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। पश्चिमी देशों पर धनाढ्य लोगों की कर चोरी रोकने के लिए कार्रवाई करने का दबाव, चीन के विदेश मंत्रालय ने फोनसेका रिपोर्ट को खारिज किया।
The family members of several senior Chinese leaders and former Chinese leaders have also been mentioned in the Panama papers.
对这种捕风捉影的东西，我们不做评论。
बताएंगे भारत के अधिकांश लोगों के लिए क्यों डायलिसिस है इतना महंगा।
यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से हम लोग टेम्पो वगैरह से आते हैं, लखनऊ गए कहाँ गए, और यहाँ डॉक्टरों ने सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस के लिए लिखा, लेकिन 1 दिन टाइम मिलता है जिससे डायलिसिस होता है, और यहाँ इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। पश्चिमी देशों की सरकारों पर धनी और शक्तिशाली लोगों को कर की चोरी रोकने के लिए दबाव बढ़ रहा है। पनामा की एक लॉ फर्म मोसाक फोनसेका के लीक हुए लाखों गोपनीय दस्तावेजों में नामी गिरामी लोगों के नाम आने के बाद उन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से सटे नोएडा में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। बाबू जगजीवन राम की जन्म जयंती के मौके पर उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था,
भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को, और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। जो आज नौकरी तलाशता है वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। मुद्रा योजना और स्टैंडअप योजना में बहुत बड़ा एक फर्क है।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। म्यांमार की संसद में एक बिल पास करके लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची के लिए स्टेट काउंसलर का नया पद बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री के बराबर पद माना जाता है। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि बिना चुनाव के नियुक्त हुए सेना के सांसदों ने इस मुद्दे पर हुए मतदान का बायकॉट किया, और जब बिल को स्वीकृति मिल रही थी तो अपना विरोध खड़े होकर किया। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी बाकी है, जो सूची के करीबी माने जाते हैं। चीन व्यापार को लेकर उत्तर कोरिया पर अपने प्रतिबंध और कड़े कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने उत्तर कोरिया से आयात होने वाले सोने और कुछ दुर्लभ धातु और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल पदार्थों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने मार्च के महीने में अपने प्रतिबंधों को बढ़ा दिया था। ये प्रतिबंध प्योंगयांग के चौथे परमाणु परीक्षण के किए जाने के बाद लगाए गए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम से आ रही रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ में 70 लोग मारे जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में राहत कर्मी भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 20 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। पूरे क्षेत्र में कई घर और फसलें बर्बाद हो गई हैं। अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्टों के अनुसार तालिबान के पूर्व नेता मुल्ला उमर के बड़े बेटे को संगठन में नई भूमिका दी गई है। मुल्ला मोहम्मद याकूब को सैन्य अभियान का कमांडर बनाया गया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब को साथ ही तालिबान के उच्च राजनीतिक समूह में भी शामिल किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि इस नियुक्ति के बाद ही नए तालिबान के नेता मुल्ला अख्तर मंसूर और उमर परिवार के बीच सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। रूस से आ रही खबरों के अनुसार वो ईरान को जल्द ही हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें भेजेगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। पश्चिमी देशों पर धनाढ्य और ताकतवर लोगों को कर चोरी करने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। पनामा के कानूनी फर्म मोसाक फोनसेका के लाखों गोपनीय दस्तावेज लीक होने के बाद, कर चोरी करने में नामी गिरामी लोगों के नाम सामने आने के बाद ये दबाव बढ़ा है। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने मांग की है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन समेत उन सभी ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए जिनका नाम इन दस्तावेजों में आया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन रिपोर्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
पनामा के कानूनी फर्म मोसाक फोनसेका के लाखों गोपनीय दस्तावेज लीक होने के बाद कर चोरी करने संबंधी जानकारियां सामने आई। इसके बाद कई देशों में कानूनी कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। आइसलैंड की संसद के बाहर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध किया। विपक्षी दल ने इन दस्तावेजों में प्रधानमंत्री सिगमंडर गुनलॉन्गसन और उनके परिवार की वित्तीय जानकारियां सामने आने के बाद पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग की है। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विदेशी राज्यों को ब्रिटेन के टैक्स कानूनों को मानना चाहिए। कॉर्बिन ने मांग की है कि जिनका नाम भी टैक्स बचाने के पनाहगाहों से जुड़ा पाया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन समेत उन सभी ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि कैमरन के महरूम पिता के विदेशों में निवेश कोष में कैमरन की कोई हिस्सेदारी नहीं है। लिखे हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि आयन कैमरन एक फर्म के निदेशक थे जो बहामाज में बैठक करती थी ताकि ब्रिटेन के टैक्स कानूनों से बच सके। मोसाक फोंसेका को दुनिया में सबसे ज्यादा गोपनीयता से काम करने वाली कंपनियों में से एक माना जाता है। उसके 1,10,00,000 लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि मोसाक फोंसेका ने किस तरह अपने ग्राहकों के काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और कर चोरी में मदद की। पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वरेला ने कहा है कि अवैध वित्तीय गतिविधियों के प्रति उनकी सरकार का रवैया सख्त है। संवाददाता सम्मेलन में वरेला ने कहा कि पनामा एक खुला देश है और किसी भी देश के कानूनी जांच में उनकी पूरी मदद करेगा।
जारी हुए दस्तावेज का संबंध एक कानूनी कंपनी से है, उनका वास्ता किसी देश से नहीं। कल जारी किए गए अपने बयान में पनामा ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी देश में इन दस्तावेजों से संबंधित शुरू हुई जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
कार्लोस वरेला के शब्द। पनामा से लीक हुए दस्तावेज में चीन के 7 मौजूदा और पूर्व नेताओं के तार विदेशी फर्म से जुड़े बताए गए हैं। इन दस्तावेजों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार के सदस्यों के नाम हैं। इनमें चीन की शक्तिशाली स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य झांग गाओली और लियू यूनशान के रिश्तेदारों के नाम भी हैं। तीनों के रिश्तेदारों के नाम टैक्स बचाने की पनाहगाहों में फर्म डायरेक्टर या फिर शेयरधारकों के तौर पर दर्ज हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल पूछे जाने पर रिपोर्ट को आधारहीन करार दिया।
शुक्रिया,
हम इन आधारहीन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के महासचिव जोस एंजेल गुरिये ने पनामा को उसके वित्तीय व्यापार में ज्यादा पारदर्शी होने को कहा है। जोस एंजेल गुरिये ने कहा है कि दस्तावेजों के लीक होने से पता चला है कि कैसे अमीर और शक्तिशाली लोगों ने अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए विदेशों में स्थित बैंकों का इस्तेमाल किया। गुरिये ने पूरी दुनिया से अपील की है कि वो पनामा के अधिकारियों को और अधिक पारदर्शी प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करें।
चीन ने मोसाक फोंसेका रिपोर्ट को खारिज किया। इस बीच अमिताभ बच्चन ने मोसाक फोंसेका रिपोर्ट में उनका नाम आने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ हैं मोहनलाल शर्मा। बताएं अमिताभ बच्चन की तरफ से क्या कहा गया है।
रेहान, जो मीडिया को इन्होंने बयान जारी किया है अमिताभ बच्चन ने, उसमें इन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस और जिस तरह की कंपनियों का उल्लेख किया गया है वो उनमें किसी कंपनी को नहीं जानते और जिन कंपनियों का नाम लिया गया है ये कंपनियां हैं सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड और ट्रेजरर शिपिंग लिमिटेड और ट्रंप शिपिंग लिमिटेड। उनका कहना है कि ये इनमें से किसी भी कंपनी के निदेशक नहीं रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी टैक्स दिए हैं और इनमें विदेशों में जो खर्च किया है पैसा वो भी शामिल है।
और इस विषय पर सोशल मीडिया में भी
आज बीबीसी हिंदी ने फेसबुक पेज पर और ट्विटर पेज पर सवाल हमारे अपने पाठकों के सामने रखा और जानना चाहा कि ये जो पनामा पेपर्स हैं इसकी चर्चा खास क्यों नहीं है। तो कुछ जवाब हैं वो मैं बताता हूँ। जग्गा जाट लिखते हैं कि ये पनामा मामला है क्या, किसने कितने पैसे खाए या बचाए, कैसे इसमें टैक्स की चोरी हुई, ये मामला अभी पूरा तरह से मालूम नहीं है, ऐसे में लोग कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मोहम्मद शाहिद लिखते हैं कि भ्रष्टाचार अब भारत में कोई मुद्दा नहीं, सबको बस किसी न किसी तरीके से काम निकालना है, अब ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका न मिला हो, ऐसे में भ्रष्टाचार का मुद्दा आम भारतीयों को झकझोरता नहीं है। कृति कुमार बड़ी रोचक टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं, अब मुद्दे बदल गए, अब तो नारे लगाएं या नहीं, ये मुद्दा है गरीबी, रोजगार, किसान, ये सब अब मत पूछिएगा। एक टिप्पणी और पढ़ना चाहूँगा, अनिल हैं, ये लिखते हैं कि पूरा देश कहीं देशभक्ति तो कहीं मंदिर और कहीं बीफ जैसे मुद्दों से उलझा हुआ है और अभी फुर्सत नहीं है भाई लोगों को इस अनामा पनामा के लिए।
बेहतरीन, फुर्सत नहीं है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल शर्मा आपका। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि उनकी संस्था उस जांच टीम का हिस्सा होगी जिसकी स्थापना पनामा की मोसाक फोंसेका कंपनी की लीक्स में भारतीय नामों की जांच के लिए हुई है। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर एक टीम का गठन किया जा रहा है जिसमें कई सरकारी एजेंसियां शामिल होंगी। अधिक जानकारी के साथ सुबैर अहमद।
भारत के एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कल अपनी एक विशेष रिपोर्ट में दावा किया था कि मोसाक फोंसेका के दस्तावेजों में 500 से अधिक भारतीयों के नाम हैं। दुनिया भर की 100 से अधिक मीडिया कंपनियों ने एक साथ मिलकर इन दस्तावेजों की जांच की थी। भारत में ये जिम्मेदारी इंडियन एक्सप्रेस को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के बाहर होते ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की जांच किए जाने के पक्ष में हैं।
इट अपीयर्स दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मोर नेम्स आर गोइंग टू कम आउट। आई वेलकम दिस इन्वेस्टिगेशन। I think it's a healthy step that
ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में और भी नाम बाहर आएंगे। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं। मेरे विचार में काले धन का पर्दाफाश करने का ये बढ़िया कदम है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने मुझसे बात की है। उनकी सलाह के बाद हमने कई सरकारी एजेंसियों पर आधारित एक टीम का गठन किया है जिसका काम होगा इन सारे दस्तावेजों की जाँच करना। जो कोई भी कानून के उल्लंघन करने का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे वित्त मंत्री जेटली के शब्द। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने इस बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई इस जांच दल के सदस्य की हैसियत से जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगा, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी भारतीय के लिए विदेश में बैंक अकाउंट खोलना कानून का उल्लंघन नहीं है। विदेश में खाता खोलने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इस खाते में जमा राशि को भारतीय इनकम टैक्स को टैक्स भरने के समय डिक्लेयर करना पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच टीम के एक सदस्य वैद्यनाथन अय्यर कहते हैं कि विदेशों में कई ऐसी जगह हैं जहां जमा राशि से कमाई में टैक्स नहीं देना पड़ता और कई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी जगहों पर कंपनियां खोली हैं। इन्हें टैक्स हेवन कहते हैं। अक्सर अपने देशों में टैक्स से बचने के लिए टैक्स हेवन में खुफिया खाते खोले जाते हैं। वो आगे कहते हैं,
2004 में भारत के नागरिक को $25,000 बाहर देश ले जाने की अनुमति दी थी। सबसे पहला खुलासा हमारे पनामा पेपर्स में इंडिया के तहत ये हुआ कि 2004 के पहले भी काफी भारतीय नागरिकों ने बाहर देशों में, जैसे ये टैक्स हेवन्स जिसे हम कहते हैं जहां पे टैक्स नहीं देना होता है, सीक्रेसी बहुत होती है, ऐसे देशों में लोगों ने कंपनीज खोली है, लोगों ने उसमें पैसा जमा किया है। ये तो सीधा कानूनी तौर पे गलत बात थी।
कल दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोपनीयता से काम करने वाली कंपनियों में से एक पनामा की मोसाक फोंसेका कंपनी के 1,10,00,000 गोपनीय दस्तावेज लीक हुए थे। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि मोसाक फोंसेका ने किस तरह अपने ग्राहकों के काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और कर चोरी में मदद की। इन खुफिया दस्तावेजों में दुनिया भर की कई अहम हस्तियों के नाम शामिल हैं। इन गोपनीय दस्तावेजों का भंडार जर्मनी के एक अखबार के हाथ लगा था जिसने खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ICIJ के साथ मिलकर इसकी जांच करने का जिम्मा उठाया। संघ ने दुनिया भर में 100 से अधिक मीडिया कंपनियों को इस काम में शामिल किया। भारत में इंडियन एक्सप्रेस ने दस्तावेजों में भारतीय नामों की जांच की शुरुआत की है और 8 महीनों की जांच के बाद इसे बाहर किया है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि पनामा दस्तावेजों में कई और बड़े नाम बाहर आ सकते हैं। उनकी जाँच अब भी जारी है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
RBI गवर्नर रघुराम राजन ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक की जिसमें रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर 6.75 से घटाकर 6.50% कर दिया गया है। रेपो रेट पर अन्य बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं जिससे ग्राहकों को मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाएगा। RBI ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में भी नीतिगत नरमी का रुख बनाए रखेगा। मैंने थोड़ी देर पहले मुंबई फोन कर BBC संवाददाता योगिता लिमे से संपर्क किया और RBI के इस फैसले का विवरण मांगा।
RBI ने उनकी पॉलिसी की घोषणा की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो उनका मेन ब्याज दर है, रेपो रेट जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने 25.25% की कटौती की घोषणा की है। तो अभी वो जो लेंडिंग रेट या रेपो रेट जिसको हम कहते हैं वो 6.75% था, तो वो अभी 6.50% हो गया है और ये 5 सालों में सबसे कम दर है।
तो इसका क्या प्रभाव आप देखती हैं अर्थव्यवस्था पर? ये इसका कुछ असर पड़ेगा क्योंकि पहले भी इस तरह की दरें घटाई गई हैं, लेकिन क्या आम लोग इससे फायदा उठा पाएंगे?
ये जो आज दर घटा है ये अपेक्षित था। काफी सारे लोग जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो है या उद्योगपति जिनसे हम बात कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे थे कि आज जो पॉलिसी की घोषणा होगी उसमें ये कटौती की घोषणा भी होगी। और इसकी एक वजह ये है कि फरवरी में इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो काफी नीचे आ गया था। रिजर्व बैंक ने पहले भी ये कहा है कि अगर इन्फ्लेशन का नंबर कम होगा इस वजह से उन्होंने ये ब्याज दर कम किया है। अभी पिछले साल से मतलब जनवरी 2015 से उन्होंने ये जो दर है ये 1.5% कम किया है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट बैंक है या इवन सरकारी, उन्होंने वो जो ब्याज दर है वो पास ऑन नहीं किया है अपने जो कस्टमर है या मतलब आम जनता जो है या बिजनेस भी है जो अपने फैक्ट्री के लिए कर्ज लेती हैं। तो इन्होंने हाल ही में, रिजर्व बैंक ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं और वे चाहते हैं कि ये जो नियम है इनकी वजह से जो ब्याज दर रिजर्व बैंक का हो उसके अनुसार जो मार्केट में ब्याज दर मिलता है बैंक देते हैं या फिर जो सरकारी बैंक देते हैं तो वो उसके अनुसार उसमें भी कटौती हो। तो ये एक्चुअली सबसे जो अहम चीज है वो आज की जो घोषणा है सबसे अहम चीज यही है।
लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स आज काफी गिरा है, इसकी क्या वजह है? उनको तो खुश होना चाहिए था।
इसकी यही वजह है कि जैसे मैं पहले कह रही थी कि उनको ज्यादा कटौती की अपेक्षा थी। हाल ही में मैं जो एक प्राइवेट बैंक है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से मिली तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है कि ब्याज दर कितना कम होना चाहिए। उनको लगता है 75 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए। और एक वजह ये है कि अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो बढ़ती जा रही है काफी गति से, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वो सरकार के पैसे खर्च करने से बढ़ रही है। और अगर वो होना जरूरी है लेकिन वो होने के लिए जो लोग कर्जा लेते हैं वो कर्ज का दाम नीचे आना चाहिए और उसके लिए ये बहुत अहम बात है कि ब्याज का जो दर है वो कम हो जाए। इसीलिए आपने जो स्टॉक मार्केट में नकारात्मक प्रतिक्रिया जो देखी है उसकी वजह से हुई है।
ये थी मुंबई से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमे। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। बिहार पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाला भारत का एक और राज्य बन गया है। आज दोपहर बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद नीतीश सरकार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। देसी शराब पर सूबे में 1 अप्रैल से पूर्ण रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सूबे में देसी के साथ विदेशी शराब भी उपलब्ध नहीं होगी। आम लोगों, खासकर महिलाओं के साथ साथ विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते साल जब देसी शराब पर रोक लगाने का फैसला किया था तभी से वे अक्सर दोहराते थे कि उनकी सरकार चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी लागू करेगी, लेकिन यह फैसला देसी शराब पर रोक लगाने के 5वें दिन ही कर लिया जाएगा इसका शायद ही किसी को अंदाजा था। लेकिन आज दोपहर बिहार कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला ले लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आमतौर पर मुख्यमंत्री मीडिया ब्रीफिंग नहीं करते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी।
और जो शराबबंदी के पक्ष में माहौल बना है, जो एकदम बुलंद आवाज इसके पक्ष में निकल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी हम सेकेंड फेज को भी लागू करने की स्थिति में पहुंच गए। इसके लिए बिहार के आम आवाम को, महिलाओं को खासकर मैं बधाई देता हूं।
बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी का पहला चरण शुरू हुआ था। इसके तहत गांव में पूर्ण शराबबंदी यानी कि देसी और विदेशी शराब दोनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, जबकि शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा इलाकों के सरकारी दुकानों में सिर्फ विदेशी शराब बेची जा रही थी। लेकिन बिहार कैबिनेट के आज के फैसले के मुताबिक सरकार शराब बेचने के लिए अब कोई दुकान नहीं खोलेगी। जो दुकानें खोली गई हैं वे आज ही बंद कर दी जाएंगी। सूबे में सेना के कंटोनमेंट को छोड़ अब होटल, बार, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भी शराब नहीं मिलेगी। विपक्ष लगातार सूबे में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहा था, ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि भाजपा नेता और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि सरकार को विपक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ा है।
ये विपक्ष के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला किया है। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम इस निर्णय को लागू करने में सरकार को पूरा सहयोग करने का और हम वचन देते हैं।
बीते साल जुलाई में नीतीश कुमार ने एक महिला की मांग पर शराबबंदी का वादा किया था और उनके आज के पूर्ण शराबबंदी के फैसले से खासकर महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है।
बहुत बढ़िया हो गया कि बंद हो गया तो बहुत अच्छे हुआ, हम लोग के बहुत अच्छा हुआ। कितना पी के घर बर्बाद कर ले रहता था, घर देता था नहीं, खाना पीना बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होता था।
दारू बंद हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग को बहुत पीता था, पैसा नहीं बचता था, बहुत अच्छा हुआ दारू बंद हो गया था।
जानकारों का मानना है कि वादे और जनदबाव के कारण नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का जो फैसला लिया है उसे पूरी तरह जमीन पर उतारना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बिहार के पड़ोसी राज्यों और नेपाल में किसी तरह की शराबबंदी नहीं है, साथ ही इतिहास भी नीतीश सरकार के साथ नहीं है। 70 के दशक में भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी जिसे करीब 3 वर्षों में ही वापस ले लिया गया था। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
क्या आपको पता है कि भारत में हर साल खराब गुर्दे से जूझ रहे हजारों लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि या तो वो डायलिसिस सुविधाओं से बहुत दूर हैं और या फिर उनके लिए डायलिसिस करवाना बेहद महंगा है। हाल के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा पहुंचाने की बात कही थी। इसे राष्ट्रीय डायलिसिस सर्विस कार्यक्रम का नाम दिया गया था, लेकिन क्या सुझाया गया PPP मॉडल कामयाब होगा? विनीत खरे की रिपोर्ट।
बिहार के दनारा गांव की रहने वाली विमला देवी के गुर्दे कई महीनों से काम नहीं कर रहे हैं। गांव में डायलिसिस सुविधा नहीं होने के कारण हर हफ्ते 2 बार उन्हें डायलिसिस के लिए पटना आना पड़ता है।
मेरे गुर्दे में प्रॉब्लम है, मेरे पति सरकारी टीचर है, मेरे 3 बच्चे हैं, अभी हमारे मेरे बाद 2 ठोक ये होता है, डायलिसिस होता है, आने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बाइक से आते हैं ना, बहुत दूर है, 30 किलोमीटर है, बच्चे कुमारे हैं, खाना उना बनाने में बहुत दिक्कत, हम चल फिर नहीं सकते, बहुत दिक्कत।
मैं कुमारी विमला जी का पति हूँ और एक नियोजित शिक्षक हैं, अब पैसे के भी प्रॉब्लम है और दूर 30-40 किलोमीटर यहाँ से हम आते हैं बाइक से लेकर इसको कराते हैं। डॉक्टर लिखे हैं कि 2 डायलिसिस होना चाहिए सप्ताह में, जो यहाँ पर मुझे 1 मिला हुआ है और दूसरा मैं प्राइवेट में कराता हूँ, ज़्यादा खर्च पड़ता है।
विमला जैसे लाखों लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की डायलिसिस को लेकर बजट भाषण में की गई घोषणाओं से उन्हें फायदा पहुँचेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर महीने जरूरतमंद लोगों में से मात्र 10% यानी करीब 225,000 लोग डायलिसिस करवा पाते हैं। इस संख्या में हर साल 225,000 लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, यानी हर साल 3.4 करोड़ ज्यादा डायलिसिस सेशंस की मांग। डायलिसिस की जरूरत उन लोगों को होती है जिनके गुर्दे किन्हीं कारणों से काम नहीं करते। गुर्दे खराब होने के लिए मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और मधुमेह को जिम्मेदार ठहराया जाता है। डायलिसिस मशीन शरीर के गंदे खून को साफ करती है। हर डायलिसिस सेशन पर 2,000 से 2,500 खर्च होता है, यानी अगर आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना हो तो हर महीने कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए का खर्च आ सकता है। कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि इस लागत को कम किया जाए और सुविधाओं को शहर के बाहर फैलाया जाए। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के इस्तेमाल की बात कही थी। साथ ही वित्त मंत्री ने डायलिसिस उपकरणों के आयात पर से सीमा शुल्क पूर्ण रूप से हटाने या कम करने का भी प्रस्ताव रखा। सवाल ये कि क्या PPP मॉडल से डायलिसिस की सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी? मुंबई किडनी फाउंडेशन के डॉक्टर उमेश खन्ना कहते हैं कि अगर सरकार का इरादा हर जिला अस्पताल में 1 या 2 डायलिसिस मशीन लगवाने का है तो ये मॉडल कामयाब नहीं होगा।
मुझे जो लग रहा है इनकी प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 2-2 मशीन छोटे छोटे लेवल के अस्पतालों में रख रहे हैं, उसके बदले डिस्ट्रिक्ट लेवल अस्पताल में 7-8 मशीनें या 10 मशीनें तक रखेंगे ना, तो उसको मेंटेन करना और जो भी PPP वाले जिसको भी आप दोगे प्राइवेट प्लेयर वो उसको रन कर पाएगा। 1 या 2 मशीन रन करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, देन वो चला जाता है धीरे धीरे, तो उसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर को इंटरेस्ट नहीं रहेगा और कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये इससे कॉस्ट आपका लेवल हो जाता है एंड इट इज पॉसिबल टू रन 8-10 बेडेड यूनिट्स इजिली। प्रोजेक्ट जब भी ये देंगे दे हैव टू हैव मतलब प्रैक्टिकल और रीजनेबल रेट से अगर प्राइवेट प्लेयर को देंगे तब वो उसमें इंटरेस्ट रखेगा, अदरवाइज ही विल लूज इंटरेस्ट एंड देन इट विल गो वेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के बस की तो बात ही नहीं है। अब देखो पूरे बॉम्बे में कम से कम 4,000 मशीनें होंगी, उसमें गवर्नमेंट की मशीनें तो 30 से 1 होंगी।
डॉक्टर खन्ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पीपीपी मॉडल बेहद कामयाब रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे सफलता नहीं मिली है। लेकिन क्या डायलिसिस मशीन उपलब्ध करवा देने से समस्या का हल निकल सकता है? बिहार के शाहपुर के विनय कुमार सिन्हा को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की जरूरत होती है, लेकिन घर से डायलिसिस सेंटर की दूरी के कारण वो हफ्ते में मात्र 1 दिन ही डायलिसिस सरकारी अस्पताल में करवा पाते हैं।
यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से हम लोग टेम्पो वगैरह से आते हैं, लखनऊ गए, कहाँ गए, और यहाँ डॉक्टरों ने सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस के लिए लिखा, लेकिन 1 दिन टाइम मिलता है जिससे डायलिसिस होता है, और यहाँ इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जनरेटर नहीं है, और डायलोजर को सभी अस्पतालों में, लेकिन इनके यहाँ स्टाफ नहीं है, जिसके चलते पेशेंट को अधिक खर्चा पड़ता है और डायलोजर भी बार बार बदलना पड़ता है।
गुर्दों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने वाली अहमदाबाद की संस्था इंडियन रीनल फाउंडेशन की पूर्वी शाह के अनुसार देश में गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या और उन तक सुविधाएं पहुंचाने से पहले उनका सर्वे जरूरी है।
देयर इज नो सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम, राइट? जैसे मलेरिया को इरेडिकेट किया या पोलियो को इरेडिकेट किया, अगर इसको इरेडिकेट करना है, सपोज यू नो We need to have some strong data, उसके basis पे analysis कर पाएं, so government also has to focus on this.
लेकिन इस पूरे मुद्दे पर निजी सेक्टर की क्या राय है? कंपनी नेफ्रो प्लस के 15 राज्यों में 68 डायलिसिस केंद्र हैं, जहां हर महीने करीब 6,000 पीड़ितों के 42,000 डायलिसिस सेशंस होते हैं। अगर सरकार नेफ्रो प्लस को पीपीपी मॉडल से जोड़ती है तो कंपनी की क्या उम्मीदें हैं?
गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर एंड फ्री स्पेस. So what we can do, we can reduce the cost of dialysis in PPP project.
नेफ्रोप्लस के राष्ट्रीय मैनेजर पवन शेट्टी कह रहे थे कि अगर सरकार बिजली, जगह, पानी की जिम्मेदारी ले तो निजी कंपनियां बाकी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। वो कह रहे थे कि कंपनियों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सरकार को उन्हें धन उपलब्ध करवाना होगा ताकि कंपनियां अपने काम पर ध्यान दे सकें। वो ये भी कहते हैं कि अगर सरकार डायलिसिस मशीनें उपलब्ध करवाए तब भी डायलिसिस पर खर्च कम हो सकता है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लाखों लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि कई दूसरे मामलों की तरह इस बार घोषणाओं के लागू होने में बहुत फर्क नहीं होगा। पटना में नीरज सहाय के साथ विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
और अब एक नजर डालते हैं खेल समाचारों पर। आदेश मेरे सामने है, बताएं आदेश क्या है स्थिति।
जी, पिछले सप्ताह इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने खिताब को बचाने में नाकाम रही भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल और पुरुष एकल वर्ग में भी अपना खिताब ना बचाने वाले के श्रीकांत अब मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएंगे। साइना नेहवाल तो फिर भी इंडियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन के श्रीकांत तो पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। मलेशिया ओपन में साइना नेहवाल को तीसरी वरीयता दी गई है, जहां पहले दौर में कल उनका सामना थाईलैंड की निचा ऑन जिंदापोल से होगा। उनके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 बार की कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में चीन की ही बिगजाओ से भिड़ेंगी। पुरुष एकल वर्ग में के श्रीकांत को कोई वरीयता नहीं दी गई है और पहले दौर में उनका सामना थाईलैंड के बुनसाक पोनसाना से होगा। उनके अलावा एच एस प्रणय तीसरी वरीयता हासिल जापान के किंतो मोमोता से भिड़ेंगे, जिन्होंने बीते रविवार को इंडिया ओपन भी जीता। पुरुष एकल वर्ग में ही भारत के अजय जयराम भी कल कोर्ट पर उतरेंगे और वो हॉन्ग के हू युन का सामना करेंगे। उधर न्यूजीलैंड में खेले जा रहे हावरेऊ बे कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज भी उन्हें पूल बी में दुनिया में 5वें नंबर की चीनी महिला हॉकी टीम से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। उधर लगातार चर्चा में आ रही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2020 प्रारूप में विकेटकीपर सरफराज अहमद के रूप में आज नया कप्तान मिल गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश आपका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पश्चिमी देशों की सरकारों पर धनी और शक्तिशाली लोगों को कर की चोरी रोकने के लिए दबाव बढ़ रहा है। म्यांमार की संसद में एक बिल पास करके लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सूची के लिए स्टेट काउंसलर का नया पद बनाया गया है। तुर्की में हैकर्स ने इंटरनेट पर डेटाबेस पोस्ट किया है, जिसमें कथित तौर पर 5 करोड़ तुर्की नागरिकों की निजी जानकारी पोस्ट की गई है। इस डेटाबेस में तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दोगन और प्रधानमंत्री अहमद दौतुग्लू के भी नाम शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में मदद की तिलकराज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।